स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 2 जून, दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। 2002 में अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को दोषी ठहराया, 36 लोग बरी।
आधों को छोड़ दिया और आधों को नहीं, उसके लिए मेरे को पसंद नहीं पड़ी ये बात, उसके लिए मुझे और जद्दोजहद करना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कांग्रेस से नाता तोड़ा, किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। एपी एक्सप्रेस धमाका मामले में निसारुद्दीन अहमद ने बिना कसूर जेल में बिताए 22 साल।
जान पहचान वाले बस घर वाले ही रह गए, मैं अपने ही शहर में अपने आप को अजनबी समझने लगा।
होंगी आपकी चिट्ठियां और अन्य खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। गुजरात में एक विशेष अदालत ने 2002 के दंगों के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 59 लोगों की हत्या के सिलसिले में 24 लोगों को दोषी करार दिया है। इस मामले में 36 लोगों को अदालत ने बरी भी किया है। गुलबर्ग सोसाइटी की हिंसा में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने आज के फैसले को सिर्फ आधा न्याय बताया है। जब गुजरात में दंगे हुए थे तो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जर्मन संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें पहले विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के ऑटोमान साम्राज्य द्वारा अर्मेनियाई लोगों की हत्या को नरसंहार घोषित किया गया है। संसद के निचले सदन में लगभग एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं तुर्की ने इसे ऐतिहासिक गलती बताया है और बर्लिन से अपने राजदूत को वापस बुलाया है। अर्मेनिया का कहना है कि 100 साल पहले तुर्की ने व्यवस्थित तरीके से 15 लाख लोगों का कत्ल किया था। हालांकि तुर्की इस संख्या को खारिज करता है और इसे नरसंहार कहने पर भी उसे आपत्ति है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में पारित किया गया है जब प्रवासी संकट से निपटने में तुर्की यूरोपीय संघ का अहम साझेदार है। कीनिया के दौरे पर गए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यिप एर्दोगान ने नैरोबी में कहा, मैंने प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात की है और हम इस बात पर सहमत हैं कि चर्चा के लिए अपने राजदूत को हम बुला रहे हैं। जब वो आएंगे तो हम इन मुद्दों पर बात करेंगे कि इसका तुर्की और जर्मनी के रिश्तों पर क्या असर होगा। मेरी तुर्की वापसी पर हम ये बात करेंगे और तय करेंगे कि तुर्की आगे क्या कदम उठाएगा। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए जो भी जरूरी होगा हम वो करेंगे। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के शब्द। फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम में भारी बारिश से बाढ़ आई हुई है। हफ्ते भर से जारी बाढ़ के हालात के कारण उत्तरी यूरोप में 9 लोग मारे गए हैं। कुछ जगहों पर पानी सड़कों पर भर गया है जिसके चलते स्कूलों को बंद करना पड़ा है और लोग अपनी छतों पर फंसे हुए हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड में बाघों के अंगों की तस्करी के मामले में अधिकारियों ने 3 लोगों पर आरोप तय किए हैं जिनमें एक बौद्ध भिक्षु भी शामिल हैं। राजधानी बैंकॉक के एक मंदिर में बुधवार को एक फ्रीजर से बाघ के 40 मरे हुए बच्चे मिले थे। इन लोगों को तब पकड़ा गया जब वो एक सूटकेस में बाघ की खाल और उसके दांत छिपाकर ले जा रहे थे। इसराइल की सेना ने कहा है कि अधिकृत पश्चिमी तट पर एक सैनिक को चाकू मारने का प्रयास करने वाली फलिस्तीनी महिला को गोली मार दी गई है। मरने वाली महिला की उम्र और पहचान जारी नहीं की गई है। और यूरोप की 140 से ज्यादा नामचीन हस्तियों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे उन्होंने ब्रितानी लोगों के नाम प्रेम पत्र का नाम दिया है। इसमें ब्रितानी लोगों से कहा गया है कि वो यूरोपीय संघ को ना छोड़ें। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी खबरों में सुना, 2002 के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा में विशेष अदालत ने आज फैसला सुना दिया है। इस मामले के 66 अभियुक्तों में से 24 को कोर्ट ने दोषी करार दिया है जबकि 36 लोगों को बरी कर दिया गया है। गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा में 69 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। अहमदाबाद से अंकुर जैन की रिपोर्ट सुनिए।
अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने आज 24 लोगों को दोषी ठहराया है। इस विशेष अदालत के न्यायाधीश पीवी देसाई ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए 36 लोगों को आरोपों से बरी भी किया है। बरी होने वालों में बीजेपी के पूर्व कॉरपोरेटर विपिन पटेल भी शामिल हैं। जिन्हें दोषी पाया गया है उनमें विश्व हिंदू परिषद के नेता अतुल वैद्य और कांग्रेस के पूर्व पार्षद मेघजी चौधरी भी शामिल हैं। अभियुक्तों में से 11 को दफा 302 के तहत दोषी पाया गया है। इस मामले में सजा का ऐलान 6 जून को किया जाएगा। इस फैसले फैसले के बाद जाकिया जाफरी ने कहा है कि उन्हें 36 आरोपियों के बरी होने पर अफसोस है और वो इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेगी।
आधों को छोड़ दिया और आधों को नहीं, उसके लिए मेरे को पसंद नहीं पड़ी ये बात। उसके लिए मुझे और जद्दोजहद करना पड़ेगा और आगे वकीलात करना और केस आगे मेरे को देखना पड़ेगा। बट मैं अभी खारिज खत्म नहीं हुआ मेरा केस, अभी और मेरे को जद्दोजहद फिर आगे बढ़ाई करना, अभी 15 साल तो हो गए।
गुलबर्ग मामले में एसआईटी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 2010 में पूछताछ की थी। एसआईटी की रिपोर्ट में मोदी को क्लीन चिट बाद में दे दी गई थी। 15 सितंबर 2015 को सुनवाई इस मामले में खत्म हो चुकी थी। ये मामला भारत के उन कुछ चुनिंदा केसों में से है जिसमें कोर्ट का ट्रायल 14 साल तक चला हो। बरी हुए लोगों में गुजरात पुलिस के अफसर KG एडा भी शामिल है। एडा पर दंगाइयों की मदद करने का आरोप था। एडा गुलबर्ग कांड के वक्त उस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर थे। आज के इस फैसले पर गुजरात कांग्रेस ने एक बार फिर BJP की आलोचना करते हुए इस फैसले को जस्टिस डिनाइड करार दिया है। इस फैसले पर गुजरात कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला कहते हैं,
देखिए जस्टिस डिनाइड 14 साल के बाद भी आया जो भी आया, क्योंकि एक एसआईटी बनी, वो एसआईटी बनी, स्टे का हुआ, टाइम प्लस न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया हमारे देश में इतनी अच्छी नहीं है। टाइम बाउंड जो होनी चाहिए, लोग बढ़ भी जाते हैं, 20-20 साल तक किसी चलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो भी आया वो इतना सेटिस्फेक्टरी नहीं है।
हालांकि इस मामले से जुड़े जानकार मानते हैं कि 2002 दंगों की जांच बहुत ही कमजोर रही और इसी वजह से कई केसों में अधिकतर अभियुक्त बरी कर दिए गए। शमशाद पठान अहमदाबाद में वकील हैं और 2002 दंगा पीड़ितों के साथ काम करती संस्था जन संघर्ष मंच के साथ जुड़े हुए हैं। वे कहते हैं,
मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ गुलबर्ग ही नहीं, SIT ने इन सारे राइट केसेस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कभी किया ही नहीं।
आज के फैसले के बाद सभी की नजर सोमवार को होगी जब कोर्ट आरोपियों को सजा सुनाएगी। अंकुर जैन, BBC अहमदाबाद।
अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी हिंसा पर अदालत के फैसले का पीड़ितों को बेसब्री से इंतजार था। मैंने बात की राजनीति विज्ञानी अच्युत याज्ञनिक से और सबसे पहले यही पूछा कि अदालत के इस फैसले को वो कैसे देखते हैं।
एक तो ये मुकदमे में मुझे ये लग रहा है सबसे पहले कि काफी देर हो गई, 14 साल के बाद ये जजमेंट आता है और इसमें काफी कोई कह सकता है काफी चीजें बदल गई, कोई कह सकता है कि एक पीढ़ी जैसे बदल गई। और इसके बाद तो गुजरात में भी साबरमती में बहुत पानी बह चुके हैं, तो काफी देर हो गई है इसमें, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा कि जिस कन्विक्शन जो हुआ है इस पर एहसान जाफरी की बेगम साहब जो है जाकिया जाफरी, वो हाईकोर्ट में जाने का उन्होंने कह दिया है, असंतोष भी अपना प्रकट कर दिया है। इसका मतलब कि ये प्रक्रिया और आगे चलेगी। हाईकोर्ट उसको कैसे देखता है, क्या करता है, वो अभी देखना होगा और इसमें कितने साल चले जाते हैं।
अच्छा, इस पूरे मामले में पूर्व कांग्रेस पार्षद मेघजी चौधरी और VHP नेता अतुल वैद्य को कोर्ट ने बरी किया है। तमाम राजनीतिक पहलू इन्वॉल्व थे इसमें। आपको लगता है कि जो न्याय हुआ है उस न्याय प्रक्रिया से आम तौर पे इस पूरे केस से जुड़े लोग संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, क्या लगता है आपको?
नहीं, लोग असंतुष्ट हैं और उनको लगेगा कि ये जो न्याय है वो अपूर्ण है, पूर्ण न्याय नहीं है, क्योंकि उस दिन जो हुआ था इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी VHP की थी और विश्व हिंदू परिषद का जो स्थानिक नेता था उसी को ही बरी कर दिया और कॉरपोरेटर को भी बरी कर दिया। इससे ज्यादा ये भावना जो है वो और गहन होगी कि ये न्याय जो है वो पूर्ण न्याय नहीं हुआ है। और इसीलिए अभी तक ऐसा भी लोग कह चुके हैं, वो सीट के जो राघवन साहब थे उन्होंने भी कहा है कि ये मिक्स बैग है।
आपकी तमाम लोगों से बात हुई होगी जो लोग केस से जुड़े रहे थे और जो लोग उसमें मारे गए उनके परिवार वालों से आपकी बात हुई होगी, वो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते होंगे?
परिवार वाले का तो जीवन ही नष्ट हो गया, क्योंकि वहाँ इसके उनका तो सब जो रिश्तेदार थे वो तो चले ही गए, जो भी बच गए वहाँ से लोग वो बेघर हो गए, निर्वासित हो गए, उसके लिए कोई विशेष योजना भी नहीं हुई, तो उनको तो बाकी जिंदगी जो है वो निर्वासित की तरह बितानी पड़ी। एक पारसी फैमिली भी ये मुस्लिम फैमिलीज के साथ थी, उनका तो बेटा ही चला गया वहाँ से और वो गुमशुदा हो गया और पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया है, ऐसा हुआ। तो वो उनकी जो जिंदगी, जो वहाँ लोग रहते थे उनकी जिंदगी तो ऐसे एक स्मशानवत हो गई।
वहाँ गुलबर्ग सोसाइटी के आसपास जो लोग रहते हैं या जो लोग वहाँ से माइग्रेट करके चले गए, या फिर हम पूरे गुजरात की बात करें तो लोगों की मानसिकता जो मुस्लिम आबादी है उनकी मानसिकता में कितना बदलाव आया है? क्या वो अब सहज हो गए हैं या आज भी उनके जहन में कहीं ना कहीं कुछ डर है?
देखिए, इसमें दो चीज हुई। मान लो कि अहमदाबाद की बात करें, क्योंकि ये गुलबर्ग सोसाइटी अहमदाबाद में थी और नरोडा पाटिया वगैरह केस में जहाँ जजमेंट आ चुका है वो भी अहमदाबाद में था। तो सबसे तो यहाँ सबसे बड़ा ये हुआ कि मुस्लिमों का अलग गेटो हो गया। तो 2002 के बाद जहाँ मिक्स पॉपुलेशन थी, नेबरहुड थी हिंदू मुस्लिम की, वो कम होती चली गई। वो पुराने शहर में भी ऐसा हुआ, वर्किंग क्लास वाला जो एरिया है वहाँ भी ऐसा हुआ, और जो लोग थे वो मुस्लिम घेटो जिसको जुहापुरा बोलते हैं अभी, और वहाँ अभी आबादी 300,000 लोगों की हो गई है, तो एक अलग घेटो हो गया। अहमदाबाद की बात ये हुई। और दूसरे शहरों में भी जहाँ जैसे बड़ोड़ा है या सूरत है, वहाँ भी ऐसी ही परिस्थिति का निर्माण हुआ है। दूसरा ये हुआ कि ये जो मुस्लिम आबादी जो अराउंड 10% है गुजरात में, इसका मतलब कि हर 10वां गुजराती जो है वो मुस्लिम है, उन लोगों में ये सेकंड क्लास सिटीजन की भावना आ गई। अभी तीसरा ये हुआ कि इसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े पैमाने पर सिर्फ अहमदाबाद में नहीं सारे गुजरात में प्रयास भी किए और एजुकेशन की तरफ गए वो लोग। तो हाल ये है कि जब 2002 के आसपास कोई 2,200 मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, वो आज के दिन 800 हो गए।
ये थे गुजरात दंगों पर अध्ययन करने वाले राजनीति विज्ञानी अच्युत याज्ञिक, जिनका कहना है कि गुलबर्ग सोसाइटी मामले में अदालत का फैसला तो आया है लेकिन इसमें काफी देर हो गई है।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजीत जोगी ने पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी के 38 में से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। उनकी नई पार्टी बनाने की घोषणा पर कांग्रेस नेताओं ने खुशी जताई है और कहा है कि उनके जाने से कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। पूरी जानकारी दे रहे हैं रायपुर से आलोक प्रकाश पुतुल।
इस साल जनवरी में जब पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 6 सालों के लिए कांग्रेस पार्टी से निकाला गया और अजीत जोगी को भी कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाले जाने की अनुशंसा कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय कमेटी को भेजी गई थी, उसी समय से नई पार्टी की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। लेकिन गुरुवार को अजीत जोगी ने आनन फानन में नई पार्टी बनाए जाने का ऐलान कर दिया। अजीत जोगी ने आज दावा किया कि कांग्रेस के 38 में से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। हमने अजीत जोगी से पूछा कि नई पार्टी की क्या तैयारी चल रही है।
6 तारीख को मैंने उमरवाही में अपने प्रिय लोगों को, खास लोगों को बुलाया है, उमरवाही की अपनी जनता को भी बुलाया है। तो पहले उनसे इजाजत दूंगा, फिर जो मेरे चाहने वाले प्रिय लोग आएंगे उनके संग बैठ कर तय करेंगे पार्टी का क्या नाम होना चाहिए, किस दिन लॉन्च होनी चाहिए।
क्या अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव द्वारा किनारा किए जाने के कारण पार्टी छोड़ी?
देखिए, कोई व्यक्ति वजह नहीं है, लक्ष्य है रमन सिंह जी से छत्तीसगढ़ को मुक्त करना। और लोगों का ये कहना है कि जब तक नेतृत्व तो आपके हाथ में नहीं होगा और छत्तीसगढ़ के फैसले छत्तीसगढ़ में नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि अब मेरे सामने के बाद आने के बाद ये लोग 10 MLA भी नहीं जिता सकते।
इधर अजीत जोगी द्वारा नई पार्टी बनाए जाने की घोषणा का छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने स्वागत किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि जोगी के जाने से कांग्रेस मजबूत होगी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने जोगी पर निशाना साधा।
अजीत जोगी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी को बेच दिया था, जिसका की रिकॉर्ड सामने है सबके, उसका चले जाना ही कांग्रेस के लिए हितकर है।
सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि अजीत जोगी के कांग्रेस छोड़ने से अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का समाप्त होना तय हो गया है।
जोगी जी की पार्टी बनाना कांग्रेस की अंतिम किल ठोकने के लिए एक और आधार तैयार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। जिस प्रकार से कांग्रेस को अंतिम सांसें गिनने के लिए और बात देखी है,
अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में राजनीति के केंद्र में रहे हैं, सत्ता में रहते हुए भी और सत्ता से बाहर भी। लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 6 तारीख को जब जोगी नई पार्टी का ऐलान करेंगे तब भी क्या उनकी ताकत ऐसी ही बनी रहेगी। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
22 साल जेल में बिताने के बाद एक शख्स को कोर्ट ने बेगुनाह बताकर बरी कर दिया। निसारुद्दीन अहमद नाम के शख्स को हैदराबाद की पुलिस ने साल 1994 में अचानक उस समय गिरफ्तार कर लिया था जब वो कॉलेज जा रहे थे। उन पर बाबरी मस्जिद की पहली बरसी पर एपी एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे और कई जख्मी हुए थे। कुछ दिन पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी और उनके भाई जहीरुद्दीन की सज़ा निरस्त कर दी और उनकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया। हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी ने निसारुद्दीन अहमद से बात की।
ऐसा हुआ था कि 15 जनवरी 1994 को जब मैं कॉलेज जा रहा था तो हैदराबाद की पुलिस जो थी वो आई हुई थी, क्या है पता नहीं, तो वो मुझे यहाँ से किडनैप कर लिए, उठा लिए रास्ते से और उठा करके वो ले गए, बगैर कर्नाटक के पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए मुझे लेके चले गए हैदराबाद अदर स्टेट। अब वहाँ ले जाकर के उन्होंने मुझे पहले तो 43 डेज इलीगल रखा विदाउट इन्फॉर्म करे हुए, कोर्ट को इन्फॉर्म किए बगैर 43 डेज इलीगल रखने के बाद फिर उन्होंने मुझे एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, फिर वहां से रिमांड लिए मेरा पुलिस कस्टडी। फिर उसमें से क्या किए वो कि एक फैब्रिकेटेड कन्फेशन था उनके पास, उसपे मेरे सिग्नेचर लेने के लिए बड़ा मुझे बहुत जुल्म किया, बहुत मारा, बहुत पीटा, लटकाया और खून में तरबतर कर दिया मुझे। तो जबकि मुझे यही नहीं पता था कि मुझे उठाया क्यों गया है, किस लिए मुझे मारा जा रहा है, मेरा कसूर क्या है। मैं जब उनसे यही सवाल करता था कि भाई वो सब ठीक है, आप मार रहे हैं ठीक है, तोड़ रहे हैं पुलिस वाले हैं सब ठीक है, लेकिन मुझे मुझे मार रहे हैं इसकी वजह तो बताओ, वो नहीं बताते रहे। तो जब उनको लगा कि अब टाइम आ गया है, इसको मतलब बुक कर देना चाहिए, तो उन्होंने फिर एक फैब्रिकेटेड कन्फेशन बनाया था। बनाने के बाद फिर उस पर मेरे जबरदस्ती सिग्नेचर ले लिए और उस वक्त तो ये बोल के लिए मार पीट के तुझे छोड़ने के कागज आते हैं। खैर उन्होंने कुछ पढ़ने उन्होंने दिया नहीं, बस उन्होंने साइन ले लिया। फिर उन्होंने क्या क्या किया कार्रवाई कोई पता नहीं, उठा के मुझे टाडा के सेक्शन के तहत जेल में भेज दिया।
आपके खानदान के साथ कुछ कनेक्शन था कि आप वो बता सके, वो आके मिल सके आपको जेल में?
जब मुझे जेल के अंदर रिमांड किया गया तब घर वालों को पता पड़ा, तो उन्होंने फिर वो आए मेरे पास। उस दौर पे तो ये मोबाइल शायद इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ था उस टाइम पे 1994 जनवरी में, तो इतना दौर तो था नहीं कि मतलब इन्फॉर्मेशन का। बहरहाल उन्होंने 2-4 दिन के अंदर घर वालों को खबर लग गई, फिर वो पहुंचे घर पर जेल पर। फिर पहुंचकर फिर उन्होंने मुझसे मुलाकात की, फिर उसके बाद उन्होंने वकील का इंतजाम किया, फिर वो फिर लग गए, जुड़ गए इस काम में, घर वाले भाई और माँ बाप और सब रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार लग गए, तो वो लोग कोशिश में लग गए कि मुझे रिहाई हो सके।
तो आपको वापस घर वापस आके आप क्या देखे?
अब घर वापस आने के बाद तो यूँ समझ लो कि मुझे जैसे पुरानी चीजों में से जो मेरे को याद थी उन चीजों में से, जैसे अब्बू थे, जो अब्बू का इंतकाल हो गया, अभी अम्मी और छोटा भाई बहने वगैरह हैं, कई लोग मुझे इनको देखने से लगता है कि कुछ यहाँ जाने पहचानी चीज है, बाकी पूरी दुनिया बदल गई है, पूरा सब कुछ बदल गया है। दोस्त लोग मुझे सब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, वो बड़े बड़े हो गए हैं, सब लोग तो अपने बाल बच्चे वाले हो गए हैं, धंधा कारोबार कर रहे हैं, किसी से मुलाकात भी शायद फोन पे होती है। मतलब ये है कि जान पहचान वाले बस घर वाले ही रह गए, मैं अपने ही शहर में अपने आप को अजनबी सा महसूस करने लगा।
22 साल बाद रिहा हुए और अब नए सिरे से जिंदगी की राह तलाश रहे निसारुद्दीन अहमद से बात की इमरान कुरैशी ने। आगे बढ़ते हैं। हिमालय क्षेत्र में 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिम नदी झील इज्मा के किनारों के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आसपास के इलाके बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद नेपाल की सेना के इंजीनियर झील से पानी निकालने के काम में जुट गए हैं। इस खबर के बारे में पूरी जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड़का से।
देखिए, हिमालय में जैसे कि नेपाल, भूटान या फिर भारत की कई सारे ऐसे ग्लेशियर लेक्स झीलें हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनकी सतह, क्योंकि जो ग्लेशियर्स है हिमनदी कहते हैं वो पिघल रहे हैं गर्मी की वजह से। तो इस वजह से ऐसा होता है कि कई सारे झीलें हैं वो फट सकते हैं, ऐसा चेतावनी वैज्ञानिकों का है। तो उस लिस्ट में इम्जा का नाम भी था, और इम्जा खास करके एवरेस्ट रीजन में है और उसके नीचे जो है काफी बस्तियां हैं, शेरपा की बस्तियां हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पुल है या फिर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स है, और सबसे तो बात यह है कि वो तो काफी लोकप्रिय ट्रेकिंग ایریا ہے, تو ٹریکنگ ٹریلز وغیرہ ہے, تو ان سب کو خطرہ ہوتا ہے اس طرح کی جھیلوں سے. تو اسی لیے یہ جو لسٹ میں رکھا ہوا تھا اسے, اور پچھلے سال کے بھوچال نے اسے اور بھی ڈسٹیبلائز کر دیا, اور بھی استھیر بنا دیا. تو اسی لیے یہ لوگ اس سے پانی 3 میٹر نیچے لے جا رہے ہیں, ان کو پانی نکال رہے ہیں اور اس کی سطح جو ہے 3 میٹر نیچے جا رہا ہے اس کو.
تو نوین, لیکن ایسے جھیل تو, ایسے جو ہم ندی جھیل ہیں وہ تو پورے ہمالیہ کھیتر میں بہت سارے ہیں, تو کیا اس ان کا بھی پانی کم کیا جائے گا یا ان کا کیا اثر ہوگا؟ کیا اس سے کوئی بھوکمپ سے جڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے؟
ویگینکوں کا ایک اور بات کہنا ہے کہ ہمالیہ میں بہت سارے گلیشیئرس ہیں, بہت سارے ایسے جھیلے ہیں اور نئے بن رہے ہیں, ان کی ادھیان نہیں ہو پا رہی ہے. جیسے کہ ابھی بھی انوینٹری جو ہے, ان کی جو لسٹ ہے پوری طرح سے نہیں بنا ہے, کہاں کتنا ہے گلیشیئرس, کون کون جگہ پر خطرہ کیا ہے, یہ نہیں بن پایا ہے. اور جہاں جہاں یہ دیکھ چکے ہیں, دیکھ پا رہے ہیں اور ان کی کچھ لمیٹڈ ادھیان ہوئی ہے, ایسے بہت کم لیکوں میں, بہت کم جھیلوں میں یہ کام ہوا ہے. جیسے کہ کئی سال پہلے بھوٹان میں ہوا تھا, نیپال میں یہ دوسرا ہے, 2000 میں ایک اور لیک کو ہوا تھا, لیکن سب سے اونچی ہائٹ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے, یہ صحیح ہے. تو اس لیے ویگینکوں کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی صحیح ادھیان ہونی چاہیے کہ کہاں کی گلیشیئرز ہیں. جیسے کہ بھارت کے اتراکھنڈ میں جو درگھٹنا ہوئی حال ہی میں کچھ سال پہلے, تو وہاں بھی ایسے ہی کچھ گلیشیئر لیکس کی بھی ایک فیکٹر بتا رہے تھے کہ وہ پھوٹ گئے ہیں. تو دیکھیے, یہ چیتاونی کافی سمے سے دے رہے ہیں, اور لیکن یہ کمپلین یہ بھی ہے, لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کو گمبھیر روپ سے نہیں لیا جا رہا ہے.
یہ تھے بی بی سی کے پریاورن سنواددادا نوین سنگھ کھڑکا, اور اب وقت ہے آپ کی چٹھیوں کا, جس میں آپ ہمارے کاریکرموں کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں. آج آپ کی چٹھیوں کو لے کر آ رہے ہیں راجیش پریادرشی اور سواتی بخشی.
آپ کی رائے श्रोताओं की चिट्ठियों के साथ मैं हूँ स्वाति बख्शी, और आज मेरे साथ हैं,
नमस्कार, मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी.
और सबसे पहले पोस्टकार्ड्स जो कि मैं हमेशा लेती हूँ, फारूक अब्दुल्ला फिजा का पोस्टकार्ड है लक्ष्मीपुर रक्सौल से. इन्होंने आदेश कुमार गुप्त की तारीफ की है और कहते हैं कि मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हर प्रोग्राम में खेल समाचार प्रस्तुत करते हैं. IPL की जो रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है. कई बार बिजली नहीं होने की वजह से मैच नहीं देख पाते हैं, लेकिन रिपोर्ट सुनकर कह रहे हैं कि दिल खुश हो जाता है.
بہت شکریہ آپ کا بہار نیپال سیما سے رکسول سے یہ پوسٹ کارڈ ہمیں لکھنے کے لیے. آدیش جی کو ہم ضرور بتا دیں گے کہ ان کی پرستوتی آپ کو پسند آئی, اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم کھیل کے سماچار آپ تک سنوائیں, اور آپ ان پر بھی چٹھیاں لکھتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے.
اوم پرکاش پاٹھک کا پتر ہے نگوا بلیا اتر پردیش سے, لکھ رہے ہیں کہ آج کل بی بی سی پر آزادی کی مہم بڑی زور شور سے چل رہی ہے, ابھیویکتی کی آزادی کا مسئلہ بھی شانت نہیں ہوا کہ پترکاروں کی آزادی کا نیا تماشا شروع ہو گیا. جن پترکاروں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بکاؤ اور پورواگرہ سے گرست ہیں.
پورواگرہ سے گرست پترکار ہوں گے, ضرور ہوں گے, پورواگرہ سے گرست ہمارے شروتا بھی ہیں, اور کوشش یہی کرنی چاہیے ہم سب کو کہ جو میڈیا ہو یا پولیس ہو, سینا ہو, سرکاری ادھیکاری ہو, کام کے جتنے بھی کھیتر ہیں اس سب میں ہر طرح کے لوگ ہیں, اور سب کو ایک ہی طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے. اور ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے پترکاروں سے بات نہ کریں جو پورواگرہ سے گرست ہوں, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پورواگرہوں کو دور رکھتے ہوئے آپ کے لیے کاریکرم پرسارت کریں.
بھوڑ بریلی سے رجت کمار کا پوسٹ کارڈ ہے, کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بول میں میرا انیک بار فون تو لگ گیا مگر بی بی سی والوں نے فون نہیں اٹھایا. اپنا فون نمبر انہوں نے یہاں پر بھی لکھ کر بھیجا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ جو بلراج مدھوک کو لے کر آپ نے کوریج کی وہ بہت اچھی تھی, وہ انہیں بہت پسند آئی ہے.
ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ سے بات نہیں کر سکے کارکرم کے دوران, اور ایسی شکایت ہمارے سینکڑوں شروتا ہر ہفتے ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں کہ یا تو فون نہیں ملا یا فون ملنے کے بعد بھی ان کی بات نہیں ہو سکی. ایک جو کارکرم ہوتا ہے انڈیا بول, اس میں بمشکل ہم 15-20 شروتاؤں کو شامل کر پاتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں اور کئی بار ہزاروں کی تعداد میں ایسے انوروھ آتے ہیں, ایسے فون کالس آتے ہیں. تو ہم واقعی معافی چاہتے ہیں سبھی شروتاؤں سے جن کو ہم شامل نہیں کر پاتے, لیکن یہ نشچت روپ سے ایک لاٹری کی طرح ہے, آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے, آپ کی باری ضرور آئے گی, اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر بار ہم کچھ نئے شروتاؤں کو شامل کر سکیں جو اکثر اس کاریکرم میں حصہ نہیں لیتے.
اور ای میلز میں اٹھا رہی ہوں, مہیندر سہارن نے ای میل لکھا ہے ڈھابا جھلار سورت گڑھ شری گنگا نگر راجستھان سے, اور ستیم سدھارتھ کا ہمیں ای میل ملا ہے, اور ان دونوں نے دنیا جہاں کی تعریف کی ہے. نکھل رنجن نے جو اوباما کی جاپان یاترا پر رپورٹ پیش کی تھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہ گنیش پرساد کا ای میل ہے, لکھ رہے ہیں کہ उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और अन्य जगहों पर बजरंग दल द्वारा युवाओं को दी जाने वाली ट्रेनिंग, जो आत्मरक्षा कैंप के अंदर से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट थी, उसकी इन्होंने तारीफ की है।
बहुत शुक्रिया। इनकी तारीफ हम निखिल रंजन और नितिन श्रीवास्तव तक पहुंचा देंगे।
एक और ईमेल जो हमें मिला है वो है सुशील कुमार त्रिपाठी का, और ये फिलाडेल्फिया यूएसए से इन्होंने लिखा है। कह रहे हैं कि बीबीसी इंडिया बोल में आप जब भी किसी पॉलिटिशियन को बुलाते हैं तो वो चर्चा शुरू होने से पहले ही बेकार हो जाती है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन अपनी ही पार्टी का गुणगान करता है, चाहे वो कोई भी हो। मुझे लगता है कि निष्पक्ष चर्चा आप लोग नहीं चाहते हैं। मैं यूएसए में रहता हूँ, कई सालों से बीबीसी सुन रहा हूँ, लेकिन अब मन नहीं करता है। रिहान फजल साहब की फ्राइडे इवनिंग का प्रोग्राम और वेंसडे यानी बुधवार का जो दुनिया जहाँ होता है, वो ये कह रहे हैं कि वेबसाइट पर जाकर ही ये सुन लेते हैं।
शुक्रिया आपका चिट्ठी लिखने के लिए इतनी दूर से, लेकिन हमारी कोशिश तो यही होती है कि निष्पक्ष चर्चा हो, उसमें आप जैसे श्रोता शामिल हों जो उनसे नेताओं से कड़े सवाल पूछें, और वो सवालों का जवाब नहीं देते हैं अगर, तो उसको भी आपको एक तरह का जवाब समझना चाहिए कि वो जवाब देने से कतरा रहे हैं, या अगर वो अपनी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं और मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में हमारे पाठक हमारे श्रोता इतने समझदार हैं कि वो समझ जाते हैं कि उनको उनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन सवाल पूछना पत्रकार होने के नाते, बीबीसी जैसा प्रसारक होने के नाते हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है
जी। और अब चलने का वक्त है और पत्र नहीं हम उठा पाएंगे। मैं जल्दी से पता बता देती हूँ। आपकी राय बीबीसी हिंदी पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और अगर आप ईमेल करना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
पत्र यूं ही लिखते रहिएगा। और अब है वक्त खेल समाचारों का। रजत चान्ना खेल समाचारों के साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। जी रजत
जी, टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और एमएस धोनी ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। ESPN की 100 ग्लोबल प्लेयर्स की लिस्ट में इन दोनों क्रिकेटर्स का नाम है। लिस्ट के टॉप 10 में ज्यादातर फुटबॉलर्स हैं, लेकिन भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली 8वें और वनडे और T20 कप्तान MS धोनी 13वें नंबर पर है। 16 एथलीट की लिस्ट में और भी इंडियन एथलीट शामिल है, लेकिन क्रिकेटर्स सिर्फ दो ही हैं। इसके अलावा टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी लिस्ट में 41वें नंबर पर है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिस्ट में नंबर 1 पर है। लेकिन पूर्व भारतीय खिलाड़ी निखिल चोपड़ा ने तारीफ की विराट कोहली की इस उपलब्धि पर।
देखिए, जिस तरीके से पिछले 6 महीने में उनका प्रदर्शन रहा है, इसमें कोई हैरानगी नहीं है कि उनका नाम महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले 6-8 महीने में जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, अपने आप को मौका ही नहीं दिया कि उनके बल्ले से रन निकल पाए। लेकिन दाद दूंगा और तारीफ करूंगा और मुबारकबाद भी दूंगा विराट कोहली को, जिस तरीके से उन्होंने अपनी भूख दिखाई और जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है।
उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया की वेस्ट इंडीज टूर के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। टीम इंडिया इस साल जुलाई अगस्त में वेस्ट इंडीज जाएगी, जहां वो 2 वार्म अप मैच के अलावा 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। टीम इंडिया का यह दौरा 50 दिनों का होगा, जिसके लिए भारतीय टीम 6 जुलाई को वेस्ट इंडीज में सेंट्स किट्स पहुंचेगी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच एंटीगुआ में खेला जाएगा। और फ्रेंच ओपन में भारत की महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने मिक्स डबल्स के मुकाबले में जीत हासिल कर अगले दौर में जगह बना ली है। मिक्स डबल्स में दूसरे वरीय सानिया क्रोएशिया के उनके जोड़ीदार डोडिश ने फ्रांस की एलिश कार्नेट और जॉनथन एमरीक की जोड़ी को 1 घंटे 40 मिनट चले मुकाबले में 6-7, 6-4, 10-8 से हरा दिया। और बात करते हैं हॉकी की, तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने 4 देशों के टूर्नामेंट में जापान के साथ अपने दूसरे मुकाबले में 1-1 से ड्रॉ किया।
बहुत शुक्रिया रजत खेल समाचारों के लिए। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। गुजरात में एक विशेष अदालत ने 2002 के दंगों के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोगों की हत्या के सिलसिले में 24 लोगों को दोषी करार दिया है। जर्मन संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें पहले विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के ऑटोमान साम्राज्य द्वारा अर्मेनियाई लोगों की हत्या को नरसंहार घोषित किया गया है। तुर्की ने इस फैसले को ऐतिहासिक गलती बताया है। फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम में भारी बारिश से बाढ़ आई हुई है और हफ्ते भर से जारी बाढ़ के हालात के कारण उत्तरी यूरोप में 9 लोग मारे गए हैं। और थाईलैंड में बाघों के अंगों की तस्करी के मामले में अधिकारियों ने 3 लोगों पर आरोप तय किए हैं, जिनमें एक बौद्ध भिक्षु भी शामिल हैं। राजधानी बैंकॉक के एक मंदिर में बुधवार को एक फ्रीजर से बाघ के 40 मरे हुए बच्चे मिले थे। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात थोड़ी देर बाद घटना चक्र में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अजित सारथी ने, तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और दुनिया भर की खबरों के लिए नजर रखिए bbcsindhi.com पर। नमस्कार।